प्रेम होगा। किसका होगा? उनके अंगत्व में जब एक व्यक्ति ऐसा है जो अनर्थों से ऊपर गया और भगवान ने भाव अवस्था को प्राप्त कर दिया और वो जो कीर्तन कर रहा है उसके कीर्तन में सम्मिलित होकर के वैसा ही भाव में संग्रह कर दिया तो वो कीर्तन कर रहा अन्यथा कीर्तन होगा। इसीलिए ये कौन वो पाठ कर रहे थे कर्ण
कृष्ण कर्ण
गोकर्ण
गोकर्ण
पाठ कर रहे थे और सभा में हजारों आदमी थे, ऋषि महर्षि जी लोग भी थे। जब पाठ समाप्त हो गया तो एक ही विमान आया। अरे भाई एक विमान क्यों आया? और विमान आना चाहिए तो किसके लिए विमान आया? जो वक्ता है उसके लिए पहला आना चाहिए ना, तो वक्ता के लिए विमान नहीं आया। तो अरे एक श्रोता के तो क्या समझना चाहिए? जो वहां पर श्रोता वक्ता में प्रधानता किसकी रही? एक श्रोता जो थे बस एक कौन धुंधकार उसने ही मन देकर के सुना, इन्होंने मन देकर के कहा भी नहीं सर, इसलिए इनके लिए विमान। तो विमान वालों से पूछा कि भाई एक ही विमान क्यों आया? तो एक ही आदमी ने इस तरह से सुना है उन्होंने निर्देश होकर और बाकी लोग नहीं सुने, इसलिए एक ही विमान आया। अब उन्होंने विशेष विशेष लोगों को साथ लिया और अब ऐसे सुनो का अपने भी चित्त उसमें लगा दिया और उन लोगों को भी ऐसे चित्त लगा। फिर एक आदमी के द्वारा सबका चित्त एक समान होकर के जब वो समाप्त हुआ तो देखा कि जितने वक्ता और श्रोता जितने थे उतना ही और सबको लेकर के ऐसे ही होना चाहिए श्रोता और वक्ता। नहीं तो श्रोता भी प्रधान हो सकता है, मुख्य हो जाएगा और वक्ता हो जाएगा गौ। और है भी ऐसा, यहां सुखदेव गोस्वामी नारद ऋषि व्यास बैठे हैं उसमें कौन से है? नागप्रभि पराश्र इत्यादि बहुत से बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मत समझो जैसे ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा किए वही श्रेष्ठ हुआ। नारद जी कितने ऊंचे हैं, वो परम मुक्त हैं और ये अभी निर्भूत कथाए हैं, अभी प्रेम की स्थिति में नहीं गए। साधकों की जब दृष्टि को विचार और नित्य लीला के परिकर उनको मानने से कल दूसरी बात किंतु अभी इस रूप में माने गए तो उनसे नारद ऋषि बहुत अधिक। इसलिए नाम गाने सदा रुचि, कीर्तन हो कृष्ण में और कीर्तन में रुचि रखकर, मैंने कीर्तन में रुचि रख, कीर्तन में रुचि कैसे समझा जाए? जब रुचि होगी नाम में और कीर्तन कर रहे हैं जसम अति नरंदन अथवा गौरानंद गोली कहवे पुलवत्त, देखा जो पुलवत्त हुआ नहीं, रोमांचित हुआ नहीं, आंखों में आंसू की धारा नहीं आई, देख रहे हैं कि स्वर ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों को कमाल करा दे, तब वो नहीं है। और जब ये विचार किया जैसे कहां हमारे अंदर में तो गौरांग बलि से पुलक तो हुआ नहीं, आंखों में आंसू नहीं, हमारा जैसा दुर्भागा जी जितना आते हैं देखो क्या आपने उनकी सभा में हमारे ऋषि गोस्वामी की सभा में पाठ हो रहा था या कौन पाठ कर रहा था, किसी का चित्त द्रवित नहीं हुआ तो वो मृत लेकर के आंखों में थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर करके और सबसे आंख छुपा करके और थोड़ा सा यहां पर लगा अथवा लगा लिया होगा कोई बाम लगा दिया, बाम मैंने पहले तो बाम का ये था मृत से थोड़ा सा लगा आंख में उसके थोड़े से आंख लगा वो देख लिया वक्ता ने। जब पाठ समाप्त हो गया तो वक्ता आकर के उसको गले से लगा। आज तक शास्त्र में हमने सुना था यदि कोई अंग भगवान का प्रतिकूल हो उस पर दंड देना, जो आंखें भगवान के प्रेम में अश्रु नहीं गिराती, उन आंखों को भी दंड देना। तो आज तक किसी को मैंने देखा नहीं था, किंतु आज हमने देखा प्रत्यक्ष ही, ये आपने आंखों को आज दंड देते थे, मुझे कुछ नहीं लगा, आप दंड आप सब कुछ देते इतना कहते हैं कि हमें उनको छुआ, बस उनके आंखों से सब कुछ में आप ऐसे ही थे। इसलिए नाम गान में रुचि ऐसी होनी चाहिए भाई, नहीं होती और चेष्टा करें, नहीं होती और चेष्टा करें, कहां गलती मेरी है, ये दूसरों की गलती से नहीं होता है, ये किसकी गलती से हो रहा है, सब समय अपना इस श्लोक को उतारने की चेष्टा करो अपने जीवन में, सत्य सुखम कुछ सत्य सुखम काम कुछ, इस चीज को उतारने की चेष्टा, ये गलती या तो मेरी है या भगवान के चिंता के रूप में है, इसलिए ऐसा सोचता हुआ अपने अच्छे गुरु का सफल भोगता हुआ भगवान के भजन में एकदम दिन रात लगाए रखते हैं, इन सब चीजों को अच्छी तरह से नोट करो भाई, यदि भजन करो अपने मन को भी कारा तू मेरा मन में अच्छी तरह से अपने मन को भी आकार नाम गाने सदा आसक्ति सदगुणा ख्याने सदर उठो, सदर देखो कि क्या सबसे पहले क्या याद आया, यदि कोई विषय आया तो वो उसके लिए प्रार्थना, कोई चीज आई हमारा भजन शिक्षण है तो ये शिक्षण, और सबसे पहले राधा कृष्ण का स्मरण आ गया, गुरु जी का स्मरण आया तो बहुत, और यदि जिस समय उठे उसी समय की कृष्ण की यादें लीलाएं याद आने लगी महाप्रभु की, तो खुश होकर हमारा जीवन भी चुका, भले ही नहीं स्मरण पूरा हो रहा है किंतु थोड़ा सा भी हो गया तो जीवन जो जीवन था, ऐसे ही क्रमशः निवृत्त करना चाहिए भाई जी, आसक्ति सब गुणा गुणाख्यान, भगवान के गुणों के आख्यान में आसक्ति होनी चाहिए, कैसी आसक्ति छूट न जाए आख्यान सुनने में और कहने में दोनों में अख्यान कहान अख्यान मैंने क्या कौन हो महाप्रभु जी की लीला करता है, रघुनाथ दास के का जो जीवन चरित्र है ये किसका महत्व है, इसमें क्या वर्णन किया गया महाप्रभु जी के या कृष्ण के लीलाओं का वर्णन सत्य के लिए ही उनका ये चरित्र अलग अलग नहीं किया जा सकता, जिसके जीवन चरित्र में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु या राधा कृष्ण जितना संबंध है उतना ही उस व्यक्ति का जीवन चरित्र ऊंचा है, जिस हरि कथा में टॉपिक जो राधा कृष्ण के उच्च से उच्चतर और उच्चतर से भी उच्चस्थ रहेगा, वो लीला कथाएं आख्यान की तरह जी की लीला कथा बहुत ही सुंदर है, किंतु राज महाराज जी का चरित्र उनसे सर्वत्र भगवत दर्शन असमस्त जीवों के प्रति उपकार करने की भाव भक्ति को देकर के उपकार करने की भावना, इसलिए ऐसा जीवन चरित्र होना साधारण लोगों का काम नहीं, ये महापुरुषों का काम है, उनसे तो वृत्ताश्रम का जीवन चरित्र में कुछ और भावनाएं हैं उनसे श्रेष्ठ, इसलिए वो उनसे उनसे दशम स्कंद के जो चरित्र हैं लीला चरित्र वो उनसे उनमें भी कर्म से उन्नत होते 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 सब करेंगे, ऐसी लीला कथाओं के सुनने में या कहने में आसक्ति होनी चाहिए, हरा नहीं जाए, नहीं होगा तो दीवार से कहें, नहीं होगा अपने आप कह सकते अपने आप रोने इस तरह से आसक्ति बिना उसके जीवित नहीं रह सकते, आसक्ति का ये काम उस समय उसको याद रहेगी भाई आपका कुशल है
उन्हीं केस में तो जो टूट गया आपका तो वो क्या
याद रखें क्या हम लोगों को जब किसी से बातचीत करने के लिए सर वहां जाते हैं पास में टहलने के लिए तो देखते हैं कि झुंड के झुंड लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और वही चर्चा हो
ये वाह ऐसे हुआ कोई अच्छा हुआ कोई कतार हुआ
अभी हमारे कानून में
पड़ जाता है किंतु जब ये ऐसी आसक्ति हो जाएगी तो नहीं पड़ेगी आसक्ति ऐसे भगवान की लीला चरित्र में
ऐसा अति आसक्ति हो गई अब समय ही नहीं है उसको जो इधर उधर की कोई चिंता करे
और कोई चिंता ही नहीं है
चिंता क्या है कृष्ण ये चिंता विचार
कहां जाए कृष्ण है ही ये चिंता विचार
कहां जाऊं कहां पाऊं
कहां
कृष्ण कहां मिलेंगे
ऐसी विशाल चिंता है कि और चिंताओं को किसी से झगड़ा करूं विवाद करूं किसी से काम मान अपमान करूं इधर करूं उधर करूं अब उसको कोई
या ये संसार का ये कार्य देखो भाव आने लोगों को नहीं हो
आप बीच में ही
उन कार्यों को छोड़ दें
तो वो फिर गुजर के बाद में वो कार्य कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो युद्ध नहीं करेगा तो नहीं करूंगा
क्यों नहीं करेगा
तो युद्ध इसलिए नहीं करेंगे भिक्षा मांगकर के जीवन निर्वाह करना भी अच्छा है किंतु युद्ध करना अपने गुरुजनों को मारना और राज्य लेकर के पोखरना ये मेरे लिए संभव देखो तू नहीं करेगा किंतु आज कह रहा है किंतु कल लड़ेगा क्यों
तुम्हारा स्वभाव ही तुमको लड़ाएगा
तुम जंगल में चला जाएगा जंगल में शेरों से लड़ेगा
भालुओं से लड़ेगा कि नहीं
जब भालू मारने के लिए आएगा उसको तो वो क्या करेगा हरे कृष्ण करा देगा
जो भालू आ रहा है
क्या करेगा
भालू तो रोकेगा कि नहीं
रोक जाएगा लड़ाई करेगा देखा जो दाल गिर रही हवा चल रहा है तो क्या करेगा
वहां से ऊपर तो उधर जाएगा कि नहीं फटेगा जो डालो भी गिरी तबाह इसी तरह से प्रकृति उसको युद्ध कराएगी तुमको यहां पर आदमी से युद्ध न करो भावनाओं से युद्ध करो यहां न वहां जरूर करेगा दो दिन के लिए
नहीं अब तो हरि भजन करेंगे कुछ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करेगा
नहीं हम तो केवल भजन करेंगे उस पर देखेंगे और कुछ
कभी नहीं जाएगा तो
कभी जाएगा कि नहीं
अच्छा श्वास लेगा कि नहीं तू
तू पानी पिएगा कि नहीं
तू खाएगा कि नहीं
अच्छा तुम चौकी पर बैठ करके भजन करो और कुछ मत करो
इधर उधर नहीं हट
करेगा
इसलिए प्रकृति युद्ध कराएगी ही तुमको
तो क्यों नहीं हमारी बात मानता
है ऐसा काम करो
इधर से बाण चलाओ और इधर से कृष्ण कृष्ण कहो सब कृष्ण की आज्ञा के लिए ऐसा करो अभी तू ऐसा ही करो किंतु उद्धव का ऐसा नहीं कर अर्जुन का ऐसा जैसा अर्जुन पात्र होता है उसके लिए वैसी शिक्षाएं सभी के लिए सभी शिक्षाएं दी
गोपियों के पास में उद्धव को भेजा
देखो तुम घर में जाकर के ये सब काम करना ये कहा
नहीं
जो जैसा पात्र होगा
ऐसी शिक्षा रहेगी
आसक्ति सदना इस तरह से भगवान के कथाओं के सुनने में और कहने में अत्यंत इतनी आसक्ति हो जैसे एक श्लोक अभी आएगा इसी में गृह कार्य में व्यग्र
पर
व्यसनी नारी जैसे होती है संसारिक कार्य में व्यग्र होने पर भी उसको सब समय उस व्यक्ति से मिलने की लालसा रहती है ऐसे ही भगवान के लीला कथाओं में आसक्त व्यक्ति संसार में कहीं उसकी आसक्ति नहीं है यही व्यक्ति है ये स्वाभाविक रूप से जब वो गुण का आख्यान कर भगवान का गुणानुवाद कर रहा है तो तन्मय होकर अब उसको कहां कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उसको अब आएगा तो नहीं सुखदेव के समय में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सुखदेव के कथन का विरोध करने वाले होंगे बहुत ऐसे कर्मी होंगे जो भी होंगे तपस्वी भी होंगे उस समय, किंतु किसी के बात को ऐसे प्रीति तपस्वी। यहां पर कि कृष्ण की जो लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं में अपने मन के अनुकूल जो है अपनी भावना के अनुरूप उन स्थानों में रहने की लक्ष्य। ऐसे तो कहा गया ना जो कृष्ण की लीला करो, महाप्रभु का स्थान है, पुरी का स्थान है, वृंदावन के स्थान है, तो इन स्थानों में भी सभी एक समान मन अपने रुचि के अनुसार भावना के अनुसार में उन स्थलों में जिससे हमारा संपर्क भावना का ऐसे ऐसे लीला स्थलियों में रहा और ऐसे ऐसे महापुरुषों के संग में रहा, नहीं तरह करके भक्ति भी उचित होकर के भी फिर। इसलिए पृथ्वी तब दशक उन स्थानों में हम लोग किसी कारण से इच्छा तो करती है वृंदावन में, सेवा कुंज में, पंछी भट्ट में, राधा कुंज में, जावक में, किंतु अभी अनुकूल नहीं हो रहा। क्यों? वहां जाने से कोई ऐसा वैष्णव नहीं मिलेगा, ऐसा संग नहीं मिलेगा, इसलिए और शरीर भी हम लोग का टिकेगा नहीं, उस तरह की प्रतिबंध है। और जिनका ऐसा नहीं है रूप गोस्वामी जैसा, रघुनाथ दास गोस्वामी है, जिनको इतनी ताकत है जो अपने प्रभाव से सबको अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, उनके लिए तो अलग है। इसलिए ये सब देख करके तो प्रति तत्व जिनका जैसे है वात्सल्य भाव वालों के लिए गोकुल इत्यादि है, नंदगांव इत्यादि, सख रस वालों के लिए वृंदावन है और ठंडी वन इत्यादि, और वात्सल्य वालों के लिए गोकुल है, नंदगांव है और सख सखी भाव वालों के लिए मधुर रस वालों के लिए वृंदावन है, नंदगांव है। विशेष करके उसमें संकेत है यहाँ पर कदम बटे है, उसके बाद में राधा कुंड है, उपयोगी है, उसमें प्रीति रहेगी। क्रमशः बट जाए, आज पहले रुचि हुई कहां नाम का और आसक्ति कहां हुई गुण अक्षण और प्रीति उससे ऊपर चली गई, ये चली उस बसती स्थल में। ये सब अनुभाव है, भाव माने भाव के ये सब लक्षण, तटस्थ लक्षण। ऐसे बहुत से लोग हैं जो राधा कुंड में रहते हैं और राधा कुंड में जन्म है और बिलबिलाते हैं पैसे के लिए तो कहां कहां छूट गए। उनसे इनसे सबसे कोई मतलब नहीं, भक्ति से भजन से कोई भी मतलब नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ब्रजवासी कहने से ब्रज में जन्म लेने वाले निवास करने वाले ही ब्रजवासी। एक आदमी का जन्म हो गया कलकत्ते में, माता पिता है ब्रज के कलकत्ते में, हम मैं ब्रजवासी ही या यहां से वहां गए वहां पर बस गए नौकरी का, मैं ब्रजवासी ब्रजवासी निष्ठान में बनूंगा और वहां पर लोगों से परिचय दे ब्रजवासी। यहां के बहुत से लोग हैं ब्रज का भाव नहीं, न तो दास्य है, न तो सखर भाव है और न तो बासल्य भाव है, न श्रृंगार का कोई तो बात ही, किंतु ब्रज में जन्म है। ब्रज में तो कछुए और सभी लोग जन्म लेते हैं, मच्छरियां भी और भी और किसको अब खाने से तो गड़बड़ हो जाए बहुत तरह के, सब ब्रजवासी हैं, किंतु हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन सबको ब्रजवासी के रूप में देखने वाले हम लोग कौन
मुक्त महापुरुष
उनको वो तो हम लोगों को बद्ध को भी बद्ध नहीं देते हैं, उनको तो वो मुक्त रूप में दर्शन करते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। तो प्रति तत्व ऐसे प्रति होना चाहिए, प्राण जाने पर भी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने पर ही प्रति जहां रही आसक्ति से ऊपर वाली चीज और उसको मछली को हटा दिया पानी से तो मछली छटक करती। ऐसे ही जो निष्ठा वाले इसमें रुचि आसक्ति प्रीति हो गई वो व्यक्ति कभी इस सब को छोड़ सकता है, कथा को ना तो छोड़ सकता है, न वक्ता को छोड़ सकता है, न श्रोता को वो छोड़ सकता है, न वो स्थल को छोड़ सकता है, न वो भावना को छोड़। हाँ, यदि भावना छोड़ दे तो सब कुछ छोड़ सकता है। और भावना यदि रही, कोई चीज भी इसमें एक भी नहीं छूट सकती, न ब्रजवास छूटेगा, न ब्रजवता भाव छूटेगा, न वो श्रोता वक्ता वो छूटेंगे, कोई भी नहीं। छोड़ने से भी छूट जाएगा। भाव छूट गया तो सब इत्यादि अनुभाव सुभाव छूट जाते भावे पूरे जन भाव का भाव रूपी अंकुर, किसी का प्रेम का अंकुर जो भाव है, ये यदि किसी के अंदर में अंकुरित भी हो गया, सबसे पहले बीज से अंकुर होता है, ये प्रेम अंकुर हो गया तो ये समझो जो ये चीजें अपने आप देखिए, जिसमें ये सब चीजें न दिख पड़े समझो दिखाओ नहीं। कभी कभी इस ऊपर के विचार से जब विचार करें तो एक आदमी मान लिया कि ब्रज में नहीं ही रहता है, चित्त सब समय ब्रज में रहता है, ब्रज की लीलाओं में अत्यंत आसक्त रहता है, ऊपर से नहीं मालूम हुआ किंतु हो सकता है कि ऐसे बहुत से मालूम, किंतु किसी न किसी प्रकार से ब्रज के संबंध के बिना ये चीजें कारण सत्य खूब नहीं हो, खूब का कारण उपस्थित हो जाए, चाहे लाख क्षोभ हो, चित्त क्षुब्ध मत करो, अंत तक प्रैक्टिस तो करो, जब भाव नहीं आए तो चित्त क्षुब्ध मत करो, चित्त अपने ही कारण हम पहले ही बदला, अपना ही कारण सो खूब नहीं हो, सदा कृष्ण भजे नहीं करे काल क्षय, काल क्षय नहीं करते, सत्य में कृष्ण भजन करता है, कृष्णेतर विषय विरक्ति सदा कर, कृष्ण के अतिरिक्त और जितने भी विषय उसमें विरक्ति रहती है, मान खा के लिए वो अभिमान नहीं पर, मान माने गुण रहने पर, विद्या है, पांडित्य है, और रूप है, यौवन है, उदारता है, सदाचार है, धन है, मान है, सब कुछ है, किंतु उसको मान, जैसे परीक्षित महाराज जी हो गए, जैसे रूप सनातन जी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए, ऐसे मान खा के लिए अभिमान, अभिमान नहीं होता, अवश्य पाई गई कृष्ण कृपा आशा पर, कृष्ण जरूर कृपा करें, ऐसे आशा उसके हृदय में रहती है, कृष्ण भवे और व्याकुल अंतर से कृष्ण का भजन करता है, मान लिया कि एक आदमी भजन कर रहा है खुद चित्र लगा कर और मच्छर काटने लगा, क्या करेगा, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, फिर लग रहा है हरे कृष्ण हरे, छोड़ गए, अने तो काट रहा है, काट करके फुला दिया तो बिल्कुल बाद में ये कहा मच्छर गया कि कहां क्या होता, ऐसे सब समय उसका चित्र उठ रहे, कृष्ण नाम गाने रुचि निरंतर, कृष्ण गुण आख्या में आसक्ति बिस्तर, बिस्तर माने आसक्ति, तो दूसरी आसक्ति रहने पर कृष्ण में आसक्ति नहीं रहेगी भाई, यदि किसी का मन सांसारिक विषय में है तो उसकी रुचि कृष्ण में रहेगी, वो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, इसलिए एक म्यान तो खाली करना पड़ेगा उस तलवार को प्रेम रूपी तलवार रखने के लिए, और इस तलवार में दोनों तरफ खार है, थोड़ा सा इधर उधर गया तो उत्तर कट जरूर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, इसलिए प्रेम की तलवार बड़ी दुधार वाली है, बहुत मुश्किल है, एक ही ज्ञान चाहिए उसमें संसार का व्यक्त रुचि और वो रुचि भगवान प्रति जरूर रुचि, भगवान कभी कभी वैष्णव भगवान कभी कभी ऑपरेशन करते हैं तो उनका और भी प्रीति बढ़ जाता है, प्रीति करे सदान कृष्ण बसते स्थाने एक अनुभव भगवान पूरे विद्यमान, ये भाव रूपी जो अंकुर है, भावांकुर माने भाव का अंकुर नहीं, भाव रूपी अंकुर, अर्थात प्रेम का बीज क्या है, प्रेम का बीज, अब यही अंकुरित हुआ आसक्ति से आरंभ हुआ, श्रद्धा है वही अंकुरित हुआ, कैसे पहले भजन, भजन में रुचि होना, निष्ठा आई विभूति हुआ आसक्ति का,
ये मिट्टी में रखना है और पानी देना है
और इसे अंकुर उपजा भाव।
अब अंकुर से फिर आगे बढ़कर के शुद्ध हरि भाव इत्यादि आएंगे, इसके बाद में प्रेम से मान प्रणय राग अनुराग
भाव समृद्ध होने पर जो समस्त अनुभाव उदित होते हैं उसी को कहते हैं। क्या होता है इसको बतलाएंगे अब फल।
राधा स्कंदोजल भक्त्या विन्यापराधक्तेमस्ते गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यंत्रेतमेतक्लेशयाव
भाव की प्रतिमा जब वो परिपक्व होगा स्पष्ट शक्ति थोड़ा थोड़ा उस प्रकार सुंदर भागवत भक्ति स्वामी जी को स्वामी जी बतला रहे हैं। भाव का तो एक लक्षण बताया शांति अव्यर्थ विरक्त मानस है और दूसरा फिर एक लक्षण बतला रहे हैं नित्यम विश्वतम गीतम क्रोशन हम मोटम उनका वो गुण काट गुण लोकानपेक्षित है लाला सर्वोत्तर जिसमें उसको भाव जब और भी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है उसमें आवेश में वो भर जाता आवेश हो जाता सब समय कृष्ण की स्मृति आ जाती। इसलिए कृष्ण के मिलन में आनंद से नित्य करने लगता है होता है अंतर से और ये शरीर जब आत्मा नित्य करती है तो ये शरीर भी बिल्कुल तरह उनके दीर्घ में योग होने पर अत्यंत दुखित होकर के भूमि में लोग तोड़ करने लग जाते फिर थोड़ा सा यदि उनको अनुभव किया जैसे मिल रहे हैं या दर्शन हो रहे हैं तो गीतम गीत होने लगता है जाने लगता है कुछ वर्ष और फिर यदि वियोग होने पर रोशन रोशन माने
अपने को धिक्कार देता हुआ चिल्लाना
हुंकार करता है
जम्भाई आने लगती है बार बार लंबा लंबा श्वास आने लगता है विरह के पुत्र श्वास लोकान अपेक्षित है अब लोग अपेक्षा नहीं रहता लोग क्या कहते हैं नहीं कहते
जोर से कभी चिल्लाता है, कभी दौड़ता है, कभी रोता है,
लालसा लाख तपकने लगते हैं,
अर्थात कभी खूब जोर से हंसते हैं, कभी अपने आप हिक्का में खिड़की क्या मारती है, किसी दुख से या अत्यंत किसी की चिंता करने से कुछ श्वास अवरूप में अवरूप होता है, किस लिए आती है, किसी प्रकार से भूल या कोई भी चीज ना कहीं आकर के कहीं फंस तो जो शिक्षित आती है उसको हटा, ऐसे दिक्कत भी होती है अधिक चिंतन करने पर। मानने की जैसे कोई बैठा है कहीं खो सकते हैं इंग्लैंड में अमेरिका में और खूब गंभीर उसका चिंतन करता है जो पर कभी हिंसा रोग भी होता है, हिंसा रोग होना मैंने मरने के फंक्शन होता है, मरण निकट हो जाए तो हिंसा रोग घूरना घूरना सिर घूमने लगता है, चकराने लगता है, ये सब बाह्य अनुभव शक्ति की इसको कहते हैं, शुभ सत्व से जो प्रकट होता है उसको शक्ति भाव कहते हैं, सत्व के शुद्ध सत्व किसको कहते हैं, आध्यात्मिक लोगों के हृदय से जो भाव यहां पर हमारे हृदय में आते हैं और कृष्ण के भाव से विभावित होकर के होते हैं, तब हमारे सत्व को वो विभावित उस सत्य के विभावित होने से आत्मा ने शरीर पर कुछ बाह्य लक्षण उसको शक्ति कर और अनुरूप में जो शरीर के अनुभव भाग कुछ प्रकाशित होते हैं वे सब अनुमाने पीछे पीछे किसी के भाव के पीछे पीछे अनुभव को एक और कथन
उद्भाषण
और व्यभिचारी में
स्थायी भाव
विशेष रूप से
स्थायी
भाव की तरफ में वो
विचरणशील
विचरण करके उसको बढ़ाते हैं और किस उसी में भी
यदि कोई भजन करेगा तो ये सब चीजें आए हैं,
भजन नहीं करेगा तो बस ये हमने कह दिया तुमने सुन लिया और हमने भी कह दिया हाउ प्यू नो
भाव जो सत्व से संबंधित हो गया जब हृदय में
सत्व भाव पैदा हो तो उसमें प्रकाशित हो
कैसे प्रकाशित होगा, जैसे बीज को पानी कहीं से मिल गया और मिट्टी मिल गई तो बीज में से अंकुर होगा, मिट्टी में उसका अंकुर का एक भाग नीचे जाएगा और एक भाग
ऊपर
निचला भाग उसकी जड़ बन करके चारों तरफ से उसको सुदृढ़ करें और ऊपर वाला क्रमशः पत्ते के रूप में फिर घुसे और ऊपर बढ़कर के फिर पत्ते और करते करके विशाल वृक्ष जड़ भी उतनी ही मजबूत होगी नीचे जाए और घर में ऊपर भी वैसे ही तो वैसे ही जब सात्विक विचार जब सात्विक भाव आते हैं कृष्ण विभाव चित्त कृष्ण विभाव रुचि जब चित्त को एकदम तर्क कर देती है द्रवित कर देती है उस समय कृष्ण के दर्शन से योग से उसकी अनुभूति से हमारे सत्व में तरह तरह की भावनाएं यदि उस समय जल से कोई संपर्क हो गया तो अश्रु हो गया। यदि यदि मिट्टी से संबंध होगा
तो स्तंभ
हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। यदि अग्नि के द्वारा होगा तो घाम पसीना से एकदम लथपथ हो जाएगा। यदि आकाश के साथ में होगा तो मूर्छा हो जाएगा, शून्य और रोमांच कम होगा। हवा के साथ में से कैसे होगा, जब भजन कोई करेगा तब जब होगा तब समझेगा, ऐसे करने से तो स्तंभ माने जड़ श्वेत स्तंभ कहते स्तंभ का उदाहरण देते। महाप्रभु जी अर्धरात्रि में उठे विष्णु प्रिया के परम से और उठ करके निर्मोही निष्ठुर बन करके घर से बाहर जाएंगे संन्यास लेने के लिए कटवा कृष्ण को अन्वेषण कर और सचिव मिया को पता लग गया कि आज रात में जरूर ये जाएगा, रात भर उनको नींद नहीं है, कब जाएगा कब जाएगा। और उन्होंने देखा जो वो आ रहा है मेरा बेटा और वो दरवाजे पर खड़ी है। महाप्रभु जी ने उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, देख रही है किंतु ऐसा जड़ बन गई न कुछ कर सकी, न शरीर से ऐसे कर सकी, न मना कर सकी, न कुछ एकदम जड़ आंसू भी सूख गई सब कुछ। यह है जड़ का महाप्रभु जी के विचार। और कृष्ण लीला में कृष्ण जब जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, गोपियों ने पहले कृष्ण को मना करने का प्रयास किया, मत जाओ। यशोदा को तो बड़ी उल्टी सीधी बातें बतलाई, उन्होंने कहा कि तुम अपने पलंग के नीचे उसको छिपा नहीं सकती, अप्रूव तुम्हारे पास से लेकर के चलाया जाएगा, तुमको धिक्कार है। और जब कृष्ण तो भी नहीं माने, आकर के रथ से उतरे अप्रूव के रथ से और प्रतिज्ञा करने लगे मैं परसों जरूर लौट गया, बस एक दो दिन का नाम रहा, कल नहीं तो परसों। और संपना देते देते जब उठ करके रथ पर चढ़ गए, अप्रूव ने खोड़े को थोड़ा मारा घट रथ इधर से उधर करता गया और उस समय में कुछ देर तक चली और उसके बाद में एकदम मूर्छित हो गई और सब जल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। अत्यधिक प्रीति में ऐसा प्रीति जितनी गाड़ी होगी उतना ही ऐसा और हल्की सी प्रति से होगी तो स्तंभ श्वेत श्वेत मैंने
पसीना से कर
आनंद में भी हो सकता है बिगड़ में भी हो सकता है, अधिक तरह से ये बिगड़ नहीं एकदम भाव के विभावित होने पर सब अंकों से पशु रोमांच रोमांच कैसे होगा, रोमांच होगा इस समय में कृष्ण चारों मस्तिष्क से लड़ रहे हैं और उनके सखा देख रहे हैं और कृष्ण काल होगा और सिंह की तरह जो थपके उसकी तरफ झट उसको पकड़ लिया, जितने सखा थे सबको रोमांच हुआ। ये सब रोमांच अथवा केसी जब दैत्य आया घोड़े के रूप में और वहां पर केसी घाट पर मधुमंगल जी ने कृष्ण का रूप मांग लिया, मांग करके बंसी उसी दे दी और किसी ने समझा कि यही कृष्ण है, यही करके आया उसको देखा ही नहीं आते, और कुछ को ऐसे करते हैं देवता लोग कहां कहां भागते हैं, और जितने सखा लोग डर के मारे साथ कभी कभी भय से भी रोमांच हो जाता है। कभी गांव में जाओ और बांस का बगीचा है, बांस का घना घोर बगीचा, कहीं आस पास में घर न हो, और वहां पर पीपल का एक दरख्त होता है, और आदमी मरने पर उसमें कांटे लगा करके उसमें वो खड़ा बांध देते हैं, उसमें पानी देते हैं, प्रेत को पानी पिलाए देते, और वहां से तुम निकलो, कहीं भी कहीं शब्द हुआ तो क्या होगा, डर के मारे एकदम शरीर कांप जाए। तो वैसे ही बड़े बड़े असुरों को जब उनके सखा लोग देखेंगे और कृष्ण पर वो आक्रमण करते हैं, उस समय में उन सब भक्तों को गोपियों को तो सभी और स्वामियों को ये सभी चीजें परिपूर्ण मात्रा में ग्रहण करती। कृष्ण ने कृष्ण को अघासुर में निगल दिया, सखाओं को निगल गया, बच्चनों को निगल गया, और कृष्ण उसके इसको भेद करके निकल करके जब यह समाचार पहुंचा हुआ सबको सुनने वाले जितने जो सबको स्वर्ग है, स्वर्ग कम होता अत्यंत आनंद में अथवा अत्यंत विरह में दुख में स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग मैंने स्वर्ग मान लो गला युद्ध हो जाता है, बेपकू कांपना जैसे पीपल के पत्ते काटते हैं ऐसा हो जाता है, कई बार गिरगिट जैसा कभी लाल कभी पीला कभी हरा कभी सफेद ऐसा ऐसे उसके भाव बदलने लगते हैं, अश्रु आंखों से आंख प्रय और अंत में ये अर्थशास्त्रिक भाव सिद्ध देह में जीव अपराधिक कृष्णदास भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, सिद्ध देह में जीव अपराधिक कृष्णदास है, और दासवती उदर गई है परिचय तुच्छ बुद्धि है। भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव का सिद्ध स्वरूप एक सिद्ध देह भी है, उस सिद्ध देह में जीव भगवान का दास, इसलिए जीव का नित्य सिद्ध शरीर है। ध्यान रहा भक्त विनोद ठाकुर जी ने लिया सब जगह निश्चित जीवों का एक सिद्ध, अभी उसका थोड़ा सा बीज रूप में है स्थिति में, किंतु जमी वह हरि कथा रूपी पानी पाएगा तब वो धीरे धीरे अनुकूल होकर वो सिद्ध दे उदित होगा, और यह सिद्ध शरीर ये ऊपर वाला शरीर कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में ये किंतु दूर होगा, जब शरीर दूर होगा और आत्म शरीर का नाम ही सिद्ध शरीर। नारद जी का ये लिखा है, अप्रत्यक्ष रूप में उनका वो शरीर चला गया और ये शरीर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में भी ऐसा दिया है, सिद्ध द्वारा दिया
वृंदावन
माधे
सेवा
मुक्त करो दान ललिता अभी हमारा सिद्ध है इस शरीर के बारह मन की अंकार के बारह नक्षों के बारह छाने इसलिए जीव के सिद्ध देह में आत्म शरीर में जब ये कुछ भी प्राकृत परिचय नहीं प्राकृत परिचय के इसी में हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश जो कुछ है सब इसी उस आत्म शरीर में नाम विप्रो नचन और कपिल नाम वैश्व नाम वर्णी नचिन कपिल नो बांस हो वाद जति पर किंतु प्रोत्तर निम्न परमाणु पूर्णाम का हे गोपी पर तू प्रथम निरूपा ये चैतन्य महापुरुष जी का श्लोक गुरु गोस्वामी ने महापुरुष जी का यह श्लोक उद्धृत किया चैतन्य चैतन्य और सप्तम ये महाप्रभु जी ने खुद इस श्लोक को लिखा था वो अष्टक और ये नाम दीप्रो मैं शारीरिक दृष्टि से जो अपने को विप्र समझता हूं विप्र नहीं न तो नरपति क्षत्रिय ही नरपति होता है मैं क्षत्रिय नहीं न वैश्य न शूद्र यदि कोई नभी माने वर्णाश्रम को तो किसी न किसी रूप में जरूर मानता है जैसे पाश्चात्य देशों में इंग्लैंड इत्यादि देशों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं माने गए तो अभी जो बुद्धिजीवी हैं वो ब्राह्मण जिनकी बुद्धि है
जो बिजनेस करते हैं व्यापार और जो नौकरी चाकरी करते हैं किसी न किसी रूप में सब देशों में यह है हमारे भारतवर्ष में वैज्ञानिक नाम दिए पूर्वों में उनके पुरुष ये सब पूर्व लोग अधिक बुद्धिमान नहीं थे इसलिए लोग वैज्ञानिक नाम न लोग इसको समझ नहीं पा रहे कर नहीं पा रहे हैं इसलिए भ्रष्ट हो किंतु ये यही कारण था वैनाशन धर्म के वजह से ही भारत वर्ष उस समय में समस्त विश्व का काबू में और आज भी यदि कुछ है तो उसी के कारण अभी भी हम लोगों का ये परमार्थ का जो विचार है सिद्धांत में प्राथमिक विचार है विपासना की पद्धति है विश्व में कहीं नहीं है समस्त विश्व के लोग अभी भी सीखने के लिए आते हैं बड़े बड़े ग्रंथ लोग तो हम पर्वता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं ना हम वर्णी न तो गृहपति वनस्थ वाद के हम लोग न तो सन्यासी है ब्रह्मचारी है न गृहस्थ है न बनास्कर दान प्रति है और न तो व्यक्ति उन चारों में से भी हम लोग यही कहीं न कहीं किसी रूप में प्रत्येक देश में नहीं है किंतु वो लोग समझ नहीं पाए विश्व से वैराग्य होना ही ये व्यक्ति है विश्व में अर्ध वैराग्य होना ये बनस्पति दान और संसार में रहना ये और उसमें धर्म कर्म भी करना ये विभक्ति है और पढ़ना लिखना ये प्रमुख है किसी न किसी रूप में ये कर्म किंतु हम लोग ये सब आपको नहीं है वर्ण और आश्रम से नहीं है किंतु प्रोग्राम निकले परमानंद पूर्णान का थे लिखी परमानंद पूर्ण अमृत और भे निखिल परमानंद एक होता है आनंद आनंद आत्मा में जीव परमानंद है ब्रह्म और निखिल परमानंद पूर्ण है, पैतृसाधिपति नारायण है,
और प्रोदन निखिल
परमानंद
परमानंद पूर्णानुताध्य कृष्ण है, ब्रजेंद्रनंदन श्याम
समझे
जीवात्मा में आनंद है, इसी आनंद को सब लोग खोजते हैं, जितने योगी हैं और संतपर क्रिया सिक्किम भक्ति उद्देश्य के वो प्रे के अंत केवल बोध अलग है, ये बोध अलग
हमारा
जो
आत्मबोध है इसमें आनंद दुख उसमें ये कुछ बात
लेकिन ब्रह्मानंद वाला है
मेरी ब्रह्मानंद और परमानंद मुक्ति ये ब्रह्म की अनुभूति पर ब्रह्म की अनुभूति और निखिल परमानंद पूर्ण रूप से है नारायण इत्यादि भगवत प्रसन्न
और प्रसन्नतम रूप में प्रसन्न परिपूर्ण
प्रसन्न
जैसे कवि फिर वो कवि कुछ दुखी थी फिर कुछ और अधिक दुखी थी
और फिर उसके बाद में छूट गई कुटी और परिपूर्ण रूप से जब वो छूट गई तो उसमें सुगंध और कोमलता और सब चीजें भरपूर रूप से उसमें हो ऐसे ही
जब आनंद परम अपनी सीमा तक पहुंच गया प्रस्तुत होता उत्तर मैंने प्रस्तुत
परिपूर्ण रूप से प्रस्तुत
क्या प्रस्तुत में कृष्ण के आनंद में ही सेवा में ही आनंद है और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सर्वोत्तम अनुभूति जिसको हुई किसको हुई
उसे बढ़कर क्या खुशी
उस स्थिति का नाम है निखिल परमानंद पूर्णाम प्रताप थे आनंद का समुद्रे तम परिपूर्ण रूप में ऐसे जो गोपियां हैं ये गोपी का ये विशेषण है गोपी का ऐसे गोपियों के जो भक्त हैं भक्त माने उनका लालन पोषण करने वाले उनके उस
भाव को
उस भाव को जो ग्रहण करने वाले जो हैं हड़ताल उठते हैं उनके चरण कमलों में दास दासानुदास दासों का आनंद यहां तक इसलिए नहीं किया चैतन्य महाप्रभु जी हाथ को छिपा करके कह रहे इसलिए जानिए मैंने कौन जाने गारू क्या
रस्सी
के रस्सी के जान ना बुझे इसलिए उन लोगों के लिए ये लिख दिया नहीं तो गोपी भक्त का दास होता है गोपी भक्त का ये कभी भी हो नहीं सकता ये संगति नहीं मैं राधा और कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं कोई यदि भक्त का तो क्या समझो किस कोटि का भक्त एक तो अनभिज्ञ कुछ नहीं जानता ये समझ राधा कृष्ण का एक साथ में वो खड़े रहे उनका दर्शन किसको मिलेगा किसको मिलेगा बतलाओ कौन श्रेणी के भक्त को मिलेगा जो स्वरूप से गोपी नहीं है उसको दर्शन नहीं मिलेगा किसी को नहीं मिल सकता अच्छा जसोदा जी तो ये मिलेगा कि नहीं राधा कृष्ण जुगल जो भी है उनको ये देखेंगे कि नहीं दास लोग देखेंगे तो हनुमान इत्यादि कोई प्रश्न नहीं सखा लोग दोनों को देखेंगे एक साथ में बहुत कम
बहुत
वो भी वैसा निर्देश देख सकेंगे कौन स्वपक्षवादी जो गोपियां उनकी कोई दुर्दी जाति हो उनकी राशि हो तो उनके इस ये दास और इत्यादि इसलिए उन्होंने प्रच्छन्न रूप में दूसरे जो पूछने वाला वो भी त्याग जो नहीं पूछा जा सकता। इसलिए हम लोगों के दो स्वामियों ने कोई शालग्राम की पूजा कर नारायण की पूजा कोई गोमती शिला का पूजा कर कोई बाल गोपाल की पूजा कर मना नहीं कर करने पर तथा तुम करके उनके सन में धीरे 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 उसकी भक्ति परिपक्व होने पर अपने आप और अपने आप धीरे 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 उसका संस्कार होता है। पहले अनर्थ दूर हो समस्त अनर्थ इत्यादि दूर होने पर उसकी भावना शुद्ध हो फिर भावना शुद्ध होने पर भाव आए और फिर अपने आप में सब कुछ यहां पर राधा बल्लभ दासे अनुदास मैंने रूपगोस्वामी इत्यादि के लिए कहा यदि ले लिया इत्यादि तो रूप गोस्वामी सर्वगोस्वामी लोग हैं हमारे और गोस्वामी लोग हैं उन लोगों को लिए कहा भक्ति गोस्वामी सिंह में इसके बाद में जब भावावस्था में ही कैसे सेवा की जाए उनकी उसके लिए करता है जिसको लोग उत्पन्न हो सके सेवा साधक रूपे नात्री सद्भाव कार्य ब्रजलोकानुसार संक्षेप में यही समझो सेवा साधक को करनी पड़ेगी। अभी हम लोगों का साधन भजन सबसे पहले गुरु जी ने बतलाया वैष्णवों ने बतलाया शास्त्र ने बतलाया सबसे पहले तुम लोग साधु संघ में रख करके हरिनाम करो दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके और हरिनाम करो करते करते हरि कथा सुनते रहो हरि कथा सुनते 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 तुम्हारे अनक इत्यादि धीरे धीरे तुमको निष्ठा उत्पन्न होगी निष्ठा के बाद में धीरे धीरे रुचि है रुचि प्रबलतम होने पर वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और अंत इसके बाद में आसक्ति आएगी धीरे आसक्ति आएगी भजन भजन
भजन
बिना भजन की आराम नहीं जाएगा। अभी अभी हरिनाम कर रहे हैं और घंटा के भी बच जाए प्रसाद का तो हरिनाम करना छोड़ करके दौड़ करके चले इसलिए अभी प्रसाद में अधिक रुचि है अभी भजन में कम रुकी इस तरह से हम लोग अभी न कभी रुचि है न निष्ठा भी है रुचि निष्ठा होने पर बहुत ही सौभाग्य आदमी सौभाग्य इसके बाद में कभी वो सेवा करेगा क्या दिग्रह की सेवा करे नाम की सेवा करे वैष्णवों की सेवा करे कैसे करेगा स्थूल रूप में करेगा भावना कभी है नहीं हाँ जहां तक उसकी हम लोग कहते हैं कि श्रुति पूर्वक से बात करता है इसका मतलब क्या है श्रुति उसकी हो गई है अभी श्रुति नहीं और इसका श्रुति का तात्पर्य है सत्ता और अधिक नहीं उस श्रुति का कुछ मूल्य नहीं है एक दिन किया दूसरे दिन बुलाने तब भी नहीं गए अगर ठाकुर जी का रात में तो पता लगा मत देना थोड़ा सा पता लगा करके रात भर थोड़ा सा हवा गर्मी का दिन कितना दिन आदमी करेगा इसमें ठाकुर जी कोई कुछ नहीं करते दिन भी नहीं करते कोई कुछ नहीं करते इसलिए अपनी भावना संसार में वहां पर सेवा कर नहीं तो उस बेचारे का अपराध हो जाए। तो इसलिए अभी हमारी तरह अभी खून है क्रम था जब आसक्ति भगनीय में होने लग जाएगी तो धीरे 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 जब भाव उत्पन्न होगा लोभ उत्पन्न होगा उस समय में सेवा दो प्रकार की है स्थूल इंद्रियों से और मन से
सिद्धार शुद्ध मन जो है
मन
के पास उसमें दो प्रकार ऊपर शरीर से श्रवण के समुष्ण बंधन वाक्यात्म निवेदन तो सब प्रकार की भक्तियों का भाव भाव मई भाव संबंधी भाव अभिरुद्ध
भाव
भावानुकूल और भाव इनका यथा जो विचार करते हुए वो करता वो कहेगा लोग की स्थिति में या उस स्थिति भाव भाव मई क्या भाव मई मैंने जिसके प्रति हमारा लोग दिया है अर्थात ये पांच प्रकार के भाव पांच प्रकार बैठक भाव ये है भाव मई उसमें किसी को मैं सख्त भाव से भगवान की सेवा करूं कोई सख्त भाव से कोई दास्य भाव से कोई दाखंड भाव से कोई श्रृंगार मधुर भाव वो भाव को हृदय में लाने का नाम है भाव जो उत्तर है तुम जा रहे हैं बाबा तो उसी भाव एक सख्त माला मिलता है और एक सखी माला दिखती दोनों में भावना एक रहेगी कि अलग अलग सखी करेगी राधा कृष्ण जुगल से और कथा करेगा दिया है दास बनाएगा माला में दास माला नहीं बनाएगा वो लोटा मारेगा ग्लास मारेगा और सब सेवा करेगा घर लीतेगा पोतेगा भाभी देगा ये सब जो काम ये सब करेगा कपड़े धोगा स्नान का पानी की व्यवस्था ये सब काम भी बहुत कठिन पारिश्रमिक जो पर सरकार तथा अपने अनुकूल सब सेवा करेगा तो ये है संबंधी भाव है पांच प्रकार के विभाग हैं वो भाव और उसको संबंध रखने वाली जो सेवाएं हैं वो भाव संबंध जैसे श्रवण के समय स्मरण बंधन बाद केवल अर्थ बंधन राष्ट्र निवेदन ये सब है भाव संबंध अतः जिसका जो भाव है उसी अनुसार में वो कीर्तन करेगा उसी संसार में वो सुनेगा उसी संसार में वो सब काम करेगा तो ये भाव संबंध यही भाव संबंधी पीछे
भाव माने जाएगा
फिर तीसरा हुआ भावानुकूल अर्थात तुलसी सेवा तिलक धारण एकादशी व्रत इत्यादि बृंदा इत्यादि जी का आदर ये सब क्या चीज है भावानुकूल है ये भावानुकूल भी उसमें बदल सकता है भाव संबंधित पहले होगा और उसके बाद में भाव वो भाव आ गया भाव अभिरुद्ध पीपल की सेवा पुराणों विभिन्न पुराणों को पढ़ना उससे न लाभ हम है न हानि एक आदमी पद्म पुराण पढ़ रहा है मातंगे पुराण पढ़ रहा है कोई रामायण पढ़ रहा है इसके पढ़ने से क्या होगा कोई लाभ भी नहीं है हानि भी एक एक फूटा हुआ बर्तन है उसमें पानी भर रहे हैं पानी भर रहा है तो लाभ भी नहीं है हानि भी नहीं है परिश्रम बेकार गया हानि क्या है तो तुम्हारा बिगड़त है पानी भर लिया पानी नहीं भरता तो तुम्हारा बिगड़ता क्या परिश्रम थोड़ा करेगा वैसे इन पुराण के पढ़ने में भी परिश्रम है समय जो है ना देती किंतु नलाभ है अधिकांश साधक लोग इस पर अधिक जोर देंगे भावक और भावक संबंधी विचारों को नहीं पढ़ करके इसमें अपने समय को लगा देते हैं उसका लाभ भी नहीं है और जो और कुछ है विरोधी उसका कर्म से जो भाव रखते जैसे दाता ध्यान इत्यादि ऐसा कर रहे हैं और संपल कर रहे हैं वो भाव जो है ये सब चीजें हैं विरोधी द्वारा का ध्यान मान लिया कि राम कृष्ण के प्रति खूब निष्ठा है और भजन चाहते हैं वैसे और वो लोग जाते हैं अयोध्या तो क्या होगा द्वारा जा रहे हैं इसे जहां पर भाव की समृद्धि हो वृंदावन जाने से भाव की समृद्धि होगी गोकुल में गोवर्धन में राधाकुंड में नंदगांव बरसाना जावट इत्यादि अपने आप जावट में कोई आएगा तो कहेंगे क्या चीज है क्या है राधा जी की शक्ति भाई क्या लीला हूं तो सब लीलाओं का नंदगांव में जाएगा रूप गोस्वामी के भले में स्थली में भाई यहां पर क्या हुआ ये पेड़ पर पेड़ कदम किसको कहते हैं प्रेरणा माने
पुकारना
आवाज देना पुकारना यहां पर श्रीकृष्ण बंसी के द्वारा या अपने मुख के द्वारा आवाज से गायों को गोपियों को सखाओं को सबको बुला देते आह्वान करते वो कैसे संकेत में क्या हुआ वो जाने से कुछ वहां की मिट्टी को धूल भी शरीर में लगने से कुछ नहीं ये सब अनुकूल को ग्रहण करना चाहिए विरुद्ध वाले को क्या करना चाहिए इस तरह से बढ़ते 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 जबकि उसका लोग कुछ आगे बढ़ेगा भावावस्था में जब आएगा तो रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी की भांति दो प्रकार की सेवा करें ये साधक तरीके से सत्म कीर्तन स्मरण कीर्तन बंधन पाठ सेवन इत्यादि करें सदाचार इत्यादि अवलंबन करके ये सब जितने प्रकार के साधन हैं जो अपने लिए उनमें से भी चुन लेना चाहिए ये भाव नहीं है ये भाव बंदी है ये भाव मसूल है ये भाव अविरुद्ध है ये भाव ये सब को विचार करके ऊपर साधक शरीर से और सिद्ध रूपेण साधक रूपेण रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि की तरह में और सिद्ध रूपेण वो सिद्ध रूप से जो क्या करते हैं क्या करते हैं गोपी भाव से सब ऐसे लोग सद्भाव विक्षुना उनके भाव के प्रति जिनका लोग उत्पन्न विक्षु मैंने अत्यंत लुप्त हो गए ऐसे लोगों के प्रति जो लुप्त हैं पानी के भाव विक्षुना ताजा ब्रज लोकानुसार ब्रज लोक के अनुसार ब्रजलोक के अनुसार यदि केवल कहते और साधक रूपे को यहां पर नहीं कहते तो एक दूसरा भाव आता गोपियों ने एकादशी त्यागी की व्रत किया था या जन्माष्टमी रामनवमी किया था तो हम लोग क्यों करें ब्रजलोक अनुसार तो उसका नहीं करना चाहिए किंतु ब्रजलोकानुसार तो मान ब्रजलोक दो प्रकार के हैं एक सिद्ध है और एक साधक सिद्ध में गोपियां नंदवार यशोदा इत्यादि सिद्ध लोग हैं और दूसरा साधक उसमें अभी रूप गोस्वामी रघुनाथ सनातन गोस्वामी बात ये सब लोग साधक भी हैं सिद्ध भी हैं इन दोनों में ही ये आ जाएगा तो साधक रूप में जो लोग करते हैं वो हमारे लिए बाल इंद्रियों से और सिद्ध रूप में उन्होंने जो किया है वो हमारे लिए कुछ लोग कहते हैं जो प्रजा लोग अनुसार माने केवल सिद्ध वाला इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती साधु कहते हैं जो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपियों ने तो नहीं किया था किंतु इन्होंने किया था रूप गोस्वामी किया उन्हें कौन कारण होना चाहिए क्योंकि लोगों ने स्पष्ट कहा वैष्णव लोग एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका?
इसमें रहस्य
वो हरिदास हरिदास
की हरिदास
महाप्रसाद ठाकुर को भोग लगाया, पान लगाया और प्रसाद लगाया तो उसको फेंक देंगे हम तो ये भगवत इसकी अवज्ञा हो गई। हमारे गोस्वामी कार्य मेरी वैष्णव लोगों को गोस्वामी ने जो आदेश दिया है या हरिभक्त की रात जो बहुत विभिन्न पुराणों से लेकर के किया है उन्होंने कहा कि वैष्णवों को एकादशी के वैष्णव लोग एकादशी के दिन में अन्न ग्रहण नहीं करते। क्या ग्रहण करते हैं? दूसरे दिन में महाप्रसाद लेते हैं तो वो लोग एकादशी के दिन में नहीं ग्रहण करते तो माने क्या महाप्रसाद भी नहीं करते। मैं तो लिख देते जो वैष्णव लोग एक आदमी के दिन भी ठाकुर जी का देवा महाप्रसाद उल्लंघन नहीं करके ग्रहण करते इसलिए वो नहीं ग्रहण करते माने गुरु महाप्रसाद को भी प्रणाम करके आदर्श करके नहीं तो महापापक हो जाते। इसलिए ब्रज लोकांकार का रूप और सनातन रघुनाथ सर गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि जो प्रचलित रहने वाले हैं इनके अनुसार में ऊपर से इंद्रिय के द्वारा कठोर भाव से भजन करें साधक रूप में और सिद्ध रूप में उनके सिद्ध स्वरूप में जैसा वो भजन करते थे वैसा करें। फिर कहते हैं महाप्रभु जी कहते हैं परदेशी नारी गृह करूं तमें अस्वादयन अंतर अंतर संग रखा है नव संग रखा है। जैसे कोई किसी पर आसक्त रमणी युवती सपनों से मिलन की आकांक्षा रहती है फिर भी करता काम जो वो व्यक्त रहती है कोई समझ नहीं पाता। ऐसे भगवान के जो भक्त हैं जो भगवान के तरफ में जिनका अनुराग हो गया है अनुराग मैंने यहाँ पर आसक्ति हो गई वो सत्य में उसी की चिंता करते सत्य में भगवान की चिंता करते किसी प्रकार से कदाहम जमुना तीरे नमामि तव कृतयं दुर्गा का कुंडली काट
पंद्रह श्लोक में ये कहानी जब ऐसा हाल उत्पन्न हो जाता है स्वाभाविक रूप में तो भक्त के हृदय में ऐसी भावना रघुनाथ दास गोस्वामी का शायद है या किसका नहीं कदा हम जमुना के नमामि तव कृतयं मैं कब जमुना के तीर पर आपके नामों का भाव के साथ में कीर्तन करूंगा और उस समय में हे कुंडलिकाक्ष कमल नयन कृष्ण चंद्र उस समय मैं तांडव नृत्य करूंगा और उस समय में उद्वास कर गला रुद्ध हो जाएगा गदगद वाणी निकलेगी कीर्तन भी कीर्तन नहीं करूंगा। ऐसी मेरी कब स्थिति है मैंने भाव अवस्था में ये होता है धीरे कृष्णदास नित्य सिद्ध भाव सबको भक्ति ना था तो ये स्पष्ट भाषा में बदला है बहुत से लोग इस चीज को मानते नहीं धीरे कृष्णदास नित्य सिद्ध भाव जीव का नित्य सिद्ध किंतु प्रकटित नहीं हो रहा वो प्रकटित कब होगा स्वाति नक्षत्र के जल से जैसे उसमें सीप में मोती होती है ऐसे ही साधु के संग से वह सिद्ध भाव जब हृदय में होगा तब दोनों मिल करके तो जीवित कृष्णदास के नित्य सिद्ध भाव बद्ध जीवे कहा अविद्या आवृता थे, कृष्ण मुसने में से भाव सौहार्द रूपे उदित अजन करने से, कृष्ण अनुसन करने से वही भाव उदित होता है जो उसके हृदय में है। अपरितरे से अनुसीलन करा कर्तव्य कृष्ण प्रति वांछा देती अपराधित पाषाण हृदय भाव सुने कृत प्रेम भाव भागवत में ऐसा ही आदि
भाव भी बढ़ गया
और हो सकता है कि उसको भगवान हो जाए। तो फिर समझना है बात, ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है और उसको ये सब भाव रहे हैं। तो ये ऐसा समझेगा कौन? कनिष्ठ अधिकारी समझे जो भाव तत्पर नहीं है, वो बाहरी लक्षणों को देख करके ही केवल नहीं वो आकर्षित, बाहरी लक्षणों के साथ साथ उन्हें अंतर लक्षण भी मिलाएगा और जो मिला करके देखेगा कि तब ये भाव है अंतर भी वाला भी और ऊपर वाला भी, तब तक ही वहां पर उसको लक्षण यहां इसको अन्यथा नहीं। इसी में पहले उन्होंने ये बतलाया ऊपर का लक्षण शांति अव्यक्तता लक्षण व्यक्तिमान शून्यता आशा बंध संतकंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तदवसती स्थले इत्यादि भावा सूर्या अंतर लक्षण तो नहीं है, ये ऊपर का ही लक्षण है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें, केवल आंखों से आंसू आ रहा है केवल यही विचार नहीं, उसमें ये देखना होगा ये क्षण की अगर प्रकार गृहस्थी मान शून्यता आशा नाम गाने ये सभी चीजें हैं, ये सभी विचार केवल एक के विचार करने से नहीं, इसी के लिए ये कर प्रदर्शन सारण हृदय हुआ एकम मान हरिनाम नियत आदाधिकार नेत्रे जन गात्र पहले बतलाया नृत्य नृत्य करने लगते हैं लोग को करने लगे गीत रोशन दान करने जाते हैं रोशन अपने को धिकार देंगे जो से चिल्लाएंगे तनमोतन हंकार जिनमन श्वास घूमा लोकानपेक्षित लोग देख करके क्या करते हैं क्या करेंगे ये सब कुछ हट जाता है, हंसना मुख से लाज टपकना घूरना भूमानसी फिक्का इत्यादि ये सब प्रकाशित होने लगते हैं अच्छी तरह से भी। और तुम्हें जब भाव होगा तो उस समय में ये भी होगा मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी में संसार का कुछ नहीं, बस मैं गोपी भक्त हूं पदकम योग दासता और सानुदास यही एक और कुछ भी नहीं। उस समय में दो प्रकार से वो सेवा करेगा, सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्र ही तब अवदिक्षुना कार्य बजरोपानुसार तब वो साधक तेसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी की भांति और सिद्ध देह में उन्हीं के समान कृष्ण की और राधा जी की सेवा सब इस सबको मैंने बताया। उस समय में कहते हैं जैसे देखो ये भाव सब ऊपर से दिखाई पड़ रहे हैं किंतु भीतर में न हो भाव तो साधारण लोग उससे मोहित हो सकते हैं तो हो जाए, किंतु जो अभिज्ञ व्यक्ति हैं जो इस विषय को जानने वाले भावुक और रसिक और तत्वज्ञ वो लोग इसका आदर और मूर्ख लोग भी हैं इस विषय में नहीं जानते हैं
वो किसी की बात नहीं सुन करके आंखों से आंसू आते नहीं, बस उनके चरणों में गिर जाएंगे और न जाने क्या क्या करेंगे, बस इसी के लिए इसको श्रीमद् भागवत में आया है। ये है कब का श्रीमद् भागवत का परीक्षित महाराज जी को सुख दे और उसी को सौनक आदि ऋषियों से सुख गोस्वामी बतला रहे श्रीमद् भागवत वो प्रश्न ये द्वितीय स्कंद में आया जहां पर कि सुख सौनक सौनक को सुख गोस्वामी बतलाया कैसे परीक्षित महाराज ने और सुखदेव गोस्वामी ने वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा जो लोग आंखों से देखते हैं किंतु वैष्णव को गुरु को और भगवान को नहीं देखते, वो आंखें केवल मोर पंख की आंख है, उससे कोई काम नहीं, वो आंखें ही नहीं। वो पैर जो कृष्ण के लीला क्षेत्रों में गुरु वैष्णवों के जन्म स्थान इत्यादि में न जाए वहां पर, तो वो श्मशान में घूमने वाले बेकार जड़ पदार्थ मरे देखे है। जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं होती, गुरु वैष्णवों की सेवा नहीं होती, वो हाथ नहीं मरे देगा। जो सिर भगवान के चरणों में नमित नहीं होता और केवल सुंदर सुंदर अलंकार इत्यादि मोर मुकुट इत्यादि धारण करता है, वो भी मरे देख ही सिर के समान बेकार का ऐसे समस्त इंद्रियों की व्यर्थता बतलाए और बतला करके फिर सांघिक रूप में इसको बतला रहे। उसमें कह रहे हैं कि जिनका हरि कथा में जिनकी रुचि नहीं है, हरि कथा नहीं सुनते, इतर बातों में ही सांसारिक बातों में ही उनका समय नष्ट होता है, उनकी आयु बेकार की चाहिए, बेकार की उनका बचना जीवित रहना व स्वच्छंद रूप से आहार विहार करना, जैसे कि आजकल राजनीतिक और देश के बड़े बड़े लोगों का खाओ पियो अच्छी तरह से सब रहो सबको भर मिले और कभी इसके बाद में ये सब कुकर सुकर की भांति जीवन जाए। आजकल के लोगों का ये उद्देश्य पहले हमारा था कि खाओ पियो जैसे तैसे जीवन निर्वाह भर कर लो, घर नहीं तो भी कोई बात नहीं, किंतु भगवान का ये जीवन का उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य नहीं एक एक सबको घर चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए नौकरी चाहिए और स्वच्छंद आहार विहार होना चाहिए, ये बन गया कहते हैं जीवन धारण करने का ये उद्देश्य नहीं। अरे वृक्ष भी तो मनुष्य से अधिक दिन बचते हैं, हम लोग कितने दिन बचते हैं, अधिक से अधिक 100 से अधिक नहीं, अधिक से अधिक नहीं तो 140-145 किया है। वृक्ष हजारों हजारों वर्ष बचते हैं, तो ये मत डरो जैसे हम कल मर जाएंगे या परसों मर जाएंगे, ये डरने की जरूरत नहीं। एक दिन भी जाहिर काम किया तो उसका जीवन सार्थक हो गया और वृक्ष की तरह में हजारों लाखों वर्षों की आयु लेकर के भी यदि बचे रहे और खूब फलते फूलते रहे तो बेकार का कहते हैं कि जो वो हाथी जो कि अपनी सांस लेती। अब आजकल तो उसका प्रयोग बहुत कम देखा गया, पहले यही था एक बार लोहे को गर्म करने के लिए, और तो वो भी तो सांस लेती है, तो सांस लेना ही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है, सांस लेना ये जीवन का उद्देश्य है। और ग्रामीण पशु माने सुपर ऊंट गधा और कुत्ता और घी घी सकुन, ये लोग भी तो जीवन धारण करके रहते हैं, खाते पीते मौज करते हैं। तो ये सब कुत्ते भी खाते हैं, सुअर भी खाती है, ऊंट भी कांटा खाता है, और कुत्ता क्या खाता है, कुत्ते और सुअर सब वही खाते हैं। ये जीवन धारण का उद्देश्य नहीं, तो भरी प्रकार श्रवण और भरी कार्यों में जिनका शरीर नहीं जाता नहीं जाता, वो कुत्ते की तरह में घृणास्पद है, सुपर की भांति दिशा होती है, और ऊंट की तरह में केवल कांटे खा करके अपने मुख छेद करके कष्ट लेते हैं, और गधे की भांति भारवाही है और गधे की लात खाते हैं। वो कान काली कौड़ी के समान है, छुपी हुई कौड़ी के समान, निरर्थक उसका क्षेत्र है, कानी कौड़ी जैसे छेद देते हैं, टूटी हुई ऊपर से टूट जाती है, ऐसे ही निरर्थक जीवा हेत के समान है, मेरा के समान कर 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 करता जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनता। आदमी चाहता है जो सुख शांति करे, भले ही भले न, और साधु पुरुष चाहते हैं कि भले ही हम मरे बचे जैसे गिरे एक दिन भी जीवित रहे, शरीर जैसा भी है उसके लिए अधिक चिंता नहीं कर, एक दिन भी आई है, दो दिन भी आई है, सात दिन की आई है, पर मारा सर एक दिन यदि हो गया मैंने सारा जीवन भविष्य को सर भी एक लाख वर्ष जीवित रहना है, उठेंगे पांच दिन के एक दिन भी जीवित रह करके भगवान का अनुरोध किया तो ये सार्थक हो गया, और जब भजन नहीं किया लाख वर्ष वृक्ष और पहाड़ की तरफ में खड़े रहे वो शिव के लिए कहते हैं ये बोझा मात्र है, यदि विष्णु और वैष्णव के चरणों में नष्ट नहीं हुआ तो वो शिव कैसा है, बोझा बेकार होना, हाथ मृतक के हाथ के तुल्य और उनकी आंखें वही कुछ दृष्टि शक्ति भी, दृष्टि शक्ति राती तो भगवान का भजन करके भविष्य देखता क्रिय देते, और पदद्वय दोनों पैर कहते हैं वृक्ष की तरह, क्योंकि वो जान नहीं सकते जो विष्णु इत्यादि के तीर्थों में भगवान के तीर्थों में कृष्ण की लीला शरीर में नहीं जा पाते, हरिनाम ग्रहण करके भी जिनका अश्रु पूर्ण कार्य है नाम करते भी जिनका अश्रु पूर्वक इत्यादि नहीं होता, हृदय विकृत नहीं हो जाता, उनका सभी ये कहता है तदस्मकार जगत हरिनाम अभी